और उन तीन बाणों से हनुमान जी के मस्तक के ऊपर प्रहार किया। तीनों बाण सीधे आके हनुमान के मस्तक पर लगे, उससे खून की धारा ऐसी बहने लगी जैसे कोई गेरू पर्वत हो और उस पर बरसात हो जाए, कैसे खल खल करते वो जो है खून बहता है, ऐसे वो खून बहा जा रहा है। तथा प्लवंगा दीपमंत्री सब समय समीक्षितम राजा वरात्म जमरणे, जब इधर पता चला ओहो ये तो हमारे राक्षस राज के राजकुमार है, सुपुत्र है, अक्ष कुमार इनका नाम है। हनुमान जी को जब ये पता चला तो उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ कि चलो चलो बड़ा अच्छा हुआ, आज तो रावण के बेटे के साथ युद्ध करना हुआ, क्योंकि बेटा होता है वो भी बाप का ही तो स्वरूप होता है, देखते हैं इसमें कितना बल है। अब हनुमान जी महाराज खूब बड़ा कोप किए हुए अक्षय कुमार की तरफ देखने लगे, ऐसा लगने लगा कि मानो अपने नेत्र की अग्नि से ही अक्षय कुमार को जला डाला। अक्षय कुमार ने फिर अपने बाण लिए और बाण लेकर के हनुमान जी के ऊपर छोड़े। हनुमान जी महाराज उन बाणों से अपने को बचाए और जोर से उन्होंने नाद किया और उस नाद के कारण से बड़ा क्रोध आया अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को क्रोध आने पर वो एक छोटा सा सामान्य बांदर समझने लगा, जैसे कोई कुआ हो जिसके ऊपर खूब घास फूस लगा दे तो हाथी आकर उसको एक सामान्य जगह मानता है, ऐसे ही भाई उसने बांदर को कुछ नहीं समझा और वो युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते भाई उसमें एक बड़ी विचित्र बात हुई, वो बाण पर बाण लगावे ना, बाण पर बाण लगाए तो हनुमान जी क्या करेंगे, बाण आए दूसरा बाण पीछे आए, बीच में जो खाली जगह है खाली जगह से हनुमान जी ऊपर चले जाए और फिर दो बाण नीचे जाते हैं खाली जगह से नीचे आ जाए, ऐसे ऊपर नीचे हनुमान जी महाराज बाणों की क्षेत्र के अंदर से निकल जाए। उसने देखा कि बड़ा प्रबल बांदर आया है, शरांतरे मारुतवत निष्पतन, ऐसे हनुमान जी युद्ध करते रहे। करते 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 अक्षय कुमार को बड़ी भारी चिंता हुई। इधर हनुमान जी ने भी देखा कि भाई इन राक्षसों के साथ में ज्यादा देर खेलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इसके भेजने के बाद और भी तो कोई मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ सकते हैं ना, अतएव हम लोगों को विचार करके इसको मार देना चाहिए और इसके मार देने से रावण का बड़ा भारी दिल टूटेगा और बड़ा भारी नुकसान होगा। संभवतः रावण समझ जाए कि राम का एक दूत कितना काम करने वाला है तो सेना कितना काम कर सकेगी, ऐसा हनुमान जी महाराज ने विचार किया। और विचार करके हनुमान जी ने देखा कि ओहो ये दिखने में तो बालक दिखता है, कर्म इसके बड़े विचित्र है, ताकत ये खूब लगाता है, इसने शिक्षा खूब प्राप्त की है, इसमें बड़ा भारी पराक्रम है, इसमें बड़ा भारी उत्साह है और इस उत्साह को और पराक्रम को आज हमने जो है देख करके और जरूर ही इसको अब पूरा करना है। ऐसा विचार करके हनुमान जी महाराज ने उसी समय में जोर से छलांग लगाई और छलांग लगा करके हनुमान जी फिर ऊपर चले गए। ऊपर जाकर के हनुमान जी सीधे नीचे कूदे, नीचे कूद करके उन्होंने जो है उस रथ के ऊपर अपने पैरों का प्रहार किया। पैरों के प्रहार करते ही भाई सारे शस्त्र वगैरह सब इधर उधर हो गए और जो रथ भी टूट गया, घोड़े वगैरह भी मर गए और उनके उनके अंदर बैठा हुआ अक्षय कुमार था, अक्षय कुमार का भी क्षय हो गया। महाकपीर भूमि तले निपीड्यता, इस प्रकार से भाई उसको पृथ्वी के ऊपर पड़ा हुआ देख करके हनुमान जी महाराज बहुत खुश हुए। और जब अक्षय कुमार को मारा गया तो भाई आकाश में रहने वाले महर्षियों ने, इंद्रादि देवताओं ने, यक्षों ने, पन्नगों ने, देव और दूसरे प्राणियों ने सबने वहां पर छिप करके तालियां बजाई। आप तो प्रकट बजा रहे हैं, छिप करके बजाए, मन में खुशी तो थी इसलिए खुशी थी तो वो बजाए बिना तो रहे नहीं, लेकिन कहीं रावण को सुनाई न दे अन्यथा रावण हमारा बड़ा नुकसान कर देगा, ऐसी बात थी। तो निहत्यतम बाजी निहत्यतम वज्र सुतोपमं रणे, कुमार जब उसको मारा तो भाई एक बार तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। अब राक्षस राज रावण को पता चला कि हनुमान ने अक्षय कुमार को मार दिया है, तब अपने मन में, मन से तो टूट गया लेकिन ऊपर से अपना धैर्य दिखाते हुए उसने इंद्रजीत मेघनाथ से कहा, मेघनाथ तुम शस्त्रधारियों में सबसे श्रेष्ठ हो, तुमने असंको सुरों को सबको संकट में डाला है, देवता लोग इंद्र आदि के साथ में तुमसे युद्ध करते हैं उस समय तुम्हारे पराक्रम के सामने कोई ठहर नहीं पाता है, हे मेघनाथ आज उसी अस्त्र बल का सहारा लेकर तुम वानर हनुमान की तरफ जाओ, देखो तुम अपने बल को पहचानो, तुम्हारे शस्त्र कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, इस युद्ध के अंदर कोई तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकता है, तुम्हारे तुम्हारी शक्ति को तुमने तपस्या से संचित किया है, देश काल की प्रधानता को खूब अच्छी तरह से तुम जानने वाले हो, तुम्हारे लिए ऐसे युद्ध कोई बड़ी बात नहीं है, खेल खेल में तुम बहुत बड़ा काम कर लेते हो, संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसके ऊपर तुम विजय प्राप्त न कर सको, तुम मेरे पुत्र हो इस बात का मुझे बड़ा गर्व है, तुम्हारा बल मेरे अनुरूप है, तुम्हारा पराक्रम तुम्हारा अस्त्र बल तुम्हारा ज्ञान ये इतना विलक्षण है कि तुम जैसे पुत्र को प्राप्त कर मैं निश्चिंत हो गया हूँ, देखो मेघनाथ उसने किंकरों को मारा है, जम्बू माली को मारा है, मंत्री पुत्रों को मारा है, पांच सेनापतियों को मारा है और तुम्हारे सहोदर अक्ष कुमार को भी मारा है, देखो इनको मारा है आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि ये कोई तुमसे बड़े थोड़े ही तुम्हारे बराबर भी नहीं है, परंतु बानर का प्रभाव तुम देखो, एक बानर यहाँ लंका में बड़े बड़े पराक्रमशाली राक्षसों के रहते हुए इतना बड़ा उपद्रव करे और वो यहाँ धमका धमका की बात करे, इस बात को कौन सुनेगा कौन सहेगा, तुम जाओ खूब अच्छी तरह से परीक्षा करो, देखो पहले ऐसे शस्त्र भेजो ऐसे शस्त्र छोड़ना कि जिससे वो बानर ऐसा समझे कि तुम्हारे पास इससे बड़े-बड़े कोई शस्त्र है ही नहीं, ऐसे शस्त्र जो है प्रयोग करना, फिर उसके बाद तुम जो है और दूसरे शस्त्र फेंकना उससे थोड़े प्रभावशील हो ताकि शत्रु है वो पहले शस्त्रों में जितनी ताकत देखता है बाद के शस्त्रों से वो लापरवाह होता है, अतः तुम पहले ऐसे शस्त्र निर्बल शस्त्र फेंकना फिर तेज फेंकना फिर जो है जहां तक हो सके उसको तुम कब्जे में करके ले आना, तुम्हारे पास सेना भेजने की जरूरत तो है क्योंकि सेना जाएगी भगदड़ मच जाती है, क्योंकि जिस समय वो सेना को मारने लगेगा देखो शत्रु ऐसा भी देखता है कि मैं किसके साथ युद्ध कर सकता हूँ किसके साथ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ वो युद्ध नहीं करेगा तो सेना को मारेगा, सेना को मारेगा तो तुम सेना को बचाओगे या इस भगदड़ को बचा करके तुम उसके साथ में तुम युद्ध करोगे, अतः इस समय में तुम सेना लेके मत जाओ, तुम अकेले ही जाओ, पुत्र कार्य सिद्धि तुम्हारी होने वाली है, मैं इस युद्ध को कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं मानता हूँ क्योंकि एक बानरी तो है, जाओ तुम शस्त्रों को भी जानने वाले हो और बुद्धि से काम लेने वाले विद्यमान भी हो, काम्यश्च विजयो रणे, तुम्हारे विजय की मैं सर्वदा कामना करता हूँ, जाओ उस बानर को तुम पकड़ना। पिता के वचनों को सुनकर के मेघनाथ बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, महाराज एक बानर को जीतने के लिए आप मुझे भेजते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं चला जाता हूँ, परंतु एक बानर तो है, उस बानर को जीतना कौन सी बड़ी बात है, ऐसा विचार करके ये मेघनाथ जी अब वहां से निकलते हैं। मेघनाथ जी का जो रथ है बहुत ही विचित्र रथ है, उसमें चार सिंह है वो लगे हुए हैं, चारों सिंह तीखे दांत वाले हैं और उसके अंदर अच्छे अच्छे चित्रकारी की गई है, रथ के अंदर ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जिसका रखने का स्थान न हो, सब शस्त्र है कई मात्रा में, तलवार देख लो तूणीर देख लो जिसमें बाण रखा जाए वो तूणीर, परिघ देख लो सब शस्त्र उसके अंदर मौजूद है, भाले और लटकाए हुए हैं, शूल और रखे हुए हैं, पट्टी से अलग रखी हुई है, कई प्रकार की वहाँ पर वो ढाल है वो वहाँ पर रखी हुई है, धनुष भी कितने धनुष उसमें रखे हुए हैं, ऐसे विशाल रथ के ऊपर बैठ करके। और वो मेघनाथ अपने स्थान से चला और अशोक वाटिका की तरफ आया। हनुमान जी महाराज ने देखा आपकी बार तो रथ का बड़ा शब्द हो रहा है और बार बार धनुष की टंकार हो रही है, देखे ये कौन बड़भागी आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने देखा देखा तो बहुत विशाल रथ है। हनुमान जी महाराज बहुत राजी हुए, बड़े राजी हुए। संप्रहिष्ट तरु भवत, देखो संप्रहिष्ट इसमें आगे खूब राजी हुए। संप्रहिष्ट और संप्रहिष्ट तर माने माने और भी ज्यादा राजी हुए। और इधर भाई वो मेघनाथ धनुष लेकर के और वो वहां पर आ गया। हनुमंतम अभिप्रेत जगाम रण पंडित है। अब वो मेघनाथ युद्ध के अंदर बड़ा बड़ा पंडित था, वो हनुमान की तरफ आया। हनुमान की तरफ आकर आओ तुम दो मानव क्या, बहुत देर से उत्पात मचा रहे हो, हम तो बहुत लोगों ने आकर तुम्हारी शिकायत की है। देखो बुरा मत मानना मानव, यहाँ अपराधियों को दंड देना लंका का एक स्वभाव है, लंका वासियों का स्वभाव है, इसलिए ये तो तुमको दंड भोगना ही पड़ेगा। आकाश में नाग है, यक्ष है, सिद्ध है, किन्नर है, यक्ष है, चारण है, महर्षि है, ये सब के सब आकाश के अंदर इस युद्ध को देखने के लिए लालायित हुए हुए हैं। और जोर से जब उसने गर्जना की फिर और उसने अपना धनुष का टंकार किया तो हनुमान जी महाराज ने देखा अपन क्या करो, अपना ताल ठोको। वो ताल ठोक के खड़े हो गए और ताल ठोक के खड़े हुए तो ताल का शब्द भी मेघनाथ के कानों में गया, देखा कि हाँ ये ताल भी कोई कम नहीं है। तब उस मेघनाथ ने कई प्रकार के बाण छोड़े और जब वो बाण छोड़ने लगा तो भाई एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, बहुत जल्दी जल्दी वो बाण छोड़ने लगा। हनुमान जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, अपने भी आराम से ऊंच बैठ के कसरत हो जाएगी, वो भी ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे होते होते उन बाणों को हनुमान जी महाराज ने व्यर्थ कर दिया। राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये कला ये बंदर कैसे जानते हैं और इतना वेग से ऊंचा जाना और हमारे निशाने को गड़बड़ कर देना, ये वास्तव में इनके पास कला है। हनुमतो वेदन राक्षसोन्तरम न मारुति सस्य महात्मनोन्तरम, देखो ऐसा आपस में युद्ध हो रहा था कि हनुमान तो उनके कब्जे में नहीं आ रहे थे और हनुमान के कब्जे में ये मेघनाथ नहीं आ रहे थे, ऐसा इन दोनों का आपस में बड़ा भारी युद्ध होने वाला है। बाणों का युद्ध हो रहा है, वो साल वृक्ष फेंकते हैं तो चट्टान फेंकते हैं तो वो काट देता है तो वो नया ले आते हैं और वो उछल जाते हैं तो वो वापस फेंकते हैं तो वो बाणों में से निकल जाते हैं तो वो तिरछा हो जाता है, हनुमान जी तिरछे हो जाते हैं, वो अपने रथ को ऊपर ले आता है, हनुमान जी रथ के नीचे से निकल जाते हैं, रथ को ऊपर ले गए तो नीचे से निकल गए। तो भाई ऐसे कई प्रकार के पैंतरे होने लगे, अंत में भाई मेघनाथ के छक्के छूटने लगे। मेघनाथ ने देखा कि बानर तो बस में आने वाला नहीं है, खूब अच्छी तरह से निश्चय हो गया। अवध्यताम तस्य कपे समीक्ष कथम निरा कथम निगच्छेत इति निग्रहार्थम, अब विचार किया कि भाई इसको किस प्रकार से पकड़े खड़े से। तब उन्होंने याद किया हो मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र है, उन्होंने पितामह का दिया हुआ जो ब्रह्मास्त्र, पितामह का दिया हुआ नहीं ब्रह्मा जी का ही जो अस्त्र जो कि उनके पास था उसको उन्होंने जो है याद करके और ब्रह्मास्त्र था वो बांदर के प्रति छोड़ दिया, क्योंकि मारना तो मुझे था नहीं अतः ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र छोड़ने पर हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये काम बड़ा अच्छा हो, इस बहाने से मुझे ये बंधा हुआ मानेंगे और बंधा हुआ मान करके मुझे रावण के पास में ले जाए। तो हनुमान जी क्या क्या मुंह छोटा कर लिया और उदासीन मुंह कर लिया, ऐसे देख रहे जैसे मैं हार गया हूं, इतने भी ब्रह्मास्त्र ने उनको बांध दिया। परंतु भाई किसी प्रकार से हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चल ही नहीं सकता था, क्योंकि हनुमान जी को पहले से ऐसा वरदान मिला हुआ था। तो हनुमान जी महाराज ऊपर से केवल नाटक करने के लिए पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गए और जोर जोर से आ आ आ ऐसे ऐसे करने लगे जैसे कोई बड़ी भारी भारी की पीड़ा हो रही हो। तथोत बुद्ध्वा सकदस्तर बंधम प्रभो प्रभावा दिगतालप वेग पिता महानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीर। तब उन्होंने बुद्धि से विचार किया कि देखो मुझे ब्रह्मास्त्र के स्वरूप की भी रक्षा करनी है, यद्यपि मैं इसे बंद नहीं सकता हूँ, लेकिन ये तो मेरे मन की सोची समझी बात है, लोगों में ब्रह्मास्त्र का अपमान क्यों करूँ, अतएव मैं तो ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकता हूँ, बंधा रहना ठीक है। इस समय में रावण के पास में जाने का बड़ा अच्छा मौका मिला है। तब हनुमान जी महाराज यूं पड़े रहे और बंधे रहे। उस समय में मेघनाद को बड़ा हर्ष हुआ, ओहो जिस बानर ने इतने इतने हजारों हजारों राक्षसों को मारा है वो बानर एक बाण के द्वारा मेरे वश में हो गया है। बड़ा उनको अच्छा लगा मेघनाद को। और मेघनाद राक्षसेन्द्रेण संवाद तस्मात् भवतुम् अहम् परे। तब इधर क्या हुआ कि मेघनाद जी ने जब ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो दूसरे जो और लोग थे उन्होंने देखा कि बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। अब वो लोग गए, उन्होंने जाकर कोई हनुमान के पैर बांधता है, कोई हाथ बांधता है, कोई पीठ बांधता है, कोई क्या बांधता है, सब उसको बांधने लगे हनुमान जी को। हनुमान जी को बांधने लगे तो वो मेघनाद सिर्फ उड़ने लगा कि हमारे राक्षसों का करे तो क्या करे, इनको पता तो है ये राक्षस वास्तव में बड़े बड़े बुद्धिहीन है। अरे ब्रह्मास्त्र के ऊपर दूसरा अस्त्र नहीं लगाया जाता, दूसरा बंधन नहीं होता, यदि तुम दूसरा बंधन उस पर लगाओगे तो ये ब्रह्मास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। परंतु हनुमान जी भी बड़े होशियार थे। हनुमान जी ने देखा कि मैं तो वैसे भी ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ कर सकता हूँ और राक्षसों ने वैसे ही कर दिया। हनुमान जी कुछ नहीं बोले और वैसे के वैसे बैठे रहे। मेघनाद ने देखा कि हनुमान को इस चीज का ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मास्त्र के लपेटे के बाद दूसरा लपेटा लगाने से ब्रह्मास्त्र व्यर्थ हो गया, ये पढ़ाई है, अपने भी चुप रहो। दोनों ने चालाकियां की, तो मेघनाद ने चालाकी की तो हनुमान जी नहीं कर ली, हनुमान जी ने की तो मेघनाद नहीं कर ली। तो भाई इन दोनों ने एक दूसरे को सोचा कि वो नहीं जानता हम सिद्ध हो गए, वो नहीं जानता हम सिद्ध हो गए। तो अहो वह कर्म कृतम निरर्थम, अब वो तो सोचते हमने तो जो कर्म किया था वो निरर्थक हो गया, पर हनुमान को पता नहीं अपने भी चलने दो। अब मेघनाद ने उसको उठाया, चलो महाराज रावण के पास चलो। तो हनुमान जी महाराज कह दू लड़खड़ाते हुए उठे चले। अब सब लोग उसके पीछे पीछे चले। हनुमान जी ये आया था, ये सीता से बातें कर रहा था, ये यहाँ पर अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला है, ऐसे मिले जो उनको यो तीखे तीखे बोले। हनुमान जी महाराज सबको देखे और सबको देखते देखते वो रावण के महल में ले गए। राक्षस राज रावण बहुत ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है और वहां पर राक्षस वीरों के बीच में चर्चा हो रही है। वो आ रहा है, ये कौन है, कोयम कौन है, कहां से आया है, किसका है, किस कार्य के लिए आया है, ऐसे सब राक्षस लोग बातें कर रहे हैं। अरे इसको पकड़ तो लिया ही है, इसको मारो, इसको पीटो, इसको इसको खा जाओ, ऐसे ऐसे राक्षस लोग बोलते हैं। और अंत में राक्षस राज रावण के वहां जब पहुंचे तो वहां पूछा गया, वहां के मंत्रियों ने पूछा कौन है, कहां से आया है। हरिवीर से दूत है, मैं हरीश्वर से दूत है, बांदरों का दूत हूं, सुग्रीव का भेजा हुआ हूँ, सीता की खोज के लिए यहाँ आया हूँ, मेरा नाम हनुमान है, ऐसे हनुमान जी बोले। तो हनुमान जी बोल करके और राक्षस की तरफ देखने लगे। वो राक्षस राज रावण भाई वो ऊंचे आसन पर बैठा हुआ उसकी बातें सुन के और यूं देखता बोला उसका मुंह, उसका देखा एक मुंह थोड़ी था, दस मुंह थे उसके, दसों से यूं हनुमान को देखे क्योंकि उसके मन में बड़ा दुख था कि उसका बेटा मारा गया। और देखो तो भाई इतने सुंदर उसके वस्त्र, उसके शरीर के ऊपर रक्त चंदन लगाया हुआ, विविध प्रकार का श्रृंगार किया हुआ, उसके दांत भी आगे आए हुए, और भाई उसके जो 10 उसके सिर है, 20 उसकी भुजा है, मानो वो काले अंजन का पहाड़ ही ला करके यहाँ पर रख दिया हो, उसी को ही किसी ने राजा बना दिया हो, ऐसा वो दिखता था। तरह तरह के अलंकार उसके शरीर पर थे और स्त्रियां उसके हवा कर रही थी। हवा करने के बाद में अब जो है वो प्रहस्तादि सब बैठे हुए थे, उनके बीच में चार बड़े बड़े राक्षस बैठे थे वहाँ, और उन चारों के बीच में जो है वहाँ हनुमान जी महाराज को सब लोग देख रहे हैं। हनुमान जी देखा कि रावण का बल, रावण का धैर्य, रावण की शक्ति, रावण का तेज अपनी जगह वास्तव में खूब है। यदि रावण के अंदर क्रूरता न होती, यदि रावण के अंदर पाप नहीं होता, तो संभवतः आज रावण संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता। इसका इतना पाप करते हुए भी, इतना निंदनीय होते हुए भी और इतना क्रूर होते हुए भी, इसका अपना एक तेज तो है ही ना। पर ये तेज किसका है? ये तेज तो इसकी तपस्या का है, कोई तेज इसके कर्मों का थोड़ा ही है। अच्छा, हनुमान जी महाराज खड़े, रावण ने हनुमान को खूब अच्छी तरह से देखा और देख करके रावण ने सोचने का, क्या हो ये? एक बार मुझे नंदी ने शाप दिया था कि तू तू बंदर के द्वारा मारा जाएगा। वो शायद नंदी का शाप, ये बंदर तो नहीं आ गया है। मन में बड़ा डर गया है। उन्होंने अपने पास बैठे हुए प्रहस्त से कहा, प्रहस्त से कहा, देखो भाई एक दिन बात है ना आपको, हमने आपको थोड़ा पहले छोड़ा था, हमने कहा हम आपका समय ले लेंगे, तो भाई थोड़ा सा समय है, जहाँ प्रसंग आए ना वहाँ विराम करना चाहिए। अब आजकल हमारे भी भाई वो प्रतिबंध नहीं रहा, चातुर्मास का प्रतिबंध होता है वो रात्रि के अंदर भोजन नहीं करने का होता है, रात्रि में भोजन नहीं करते, वो प्रतिबंध भी हमारा समाप्त की तरफ ये समाप्त जैसा ही है, इसलिए थोड़ा समय भी लग जाए तो अब कोई हर्जी की बात नहीं। तो प्रहस्त से कहा राजा रावण ने, दुरात्मा पृच्छता में से, प्रहस्त इस दुष्ट से पूछिए कहां से आया है, क्यों आया है, इसने हमारे अशोक पाटिका को क्यों उजाड़ा है, राक्षसों को क्यों डराया है, राक्षसों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ किया है, यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है, तुम्हारे पास कौन से शस्त्र हैं और तुम क्यों राक्षसों के साथ में युद्ध करते हो, ये सब बातें इस दुष्ट से पूछिए। ऐसा रावण ने कहा। प्रहस्त ने कहा, हे वानर, आप क्या इंद्र के द्वारा भेजे हुए हो, या आप कुबेर के द्वारा भेजे हुए हो, या आप विष्णु के द्वारा भेजे हुए हो? तुम दिखने में बानर दिखते हो, लेकिन तुम्हारा तेज बानर जैसा नहीं है। देखो तुम सच सच बात कह दोगे तो हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, और यदि तुमने झूठ बोल दिया तो तुम्हारा जीवन संशय में पड़ जाएगा। हनुमान महाराज बड़े गौरव के साथ कहा, बिना किसी डर के साथ कहा, सुनो सभासदों, न मैं इंद्र का दूत हूँ, न मुझे यम ने और वरुण ने भेजा है, न कुबेर को मैं जानता हूँ, न विष्णु ने मुझे प्रेरित किया है। मेरी जाति बानर है सो बानर ही है, मैं बानर हूँ सो बानर ही हूँ, और मैं यहाँ राक्षसराज